तुम्हारे किए सवालों के जवाब दे देता हूँ मैं। मॉर्निंग में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आया क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट काम से जाना था, और ये भी दिखाना था कि तुम मुझे नहीं जानती, इस शादी से खुश नहीं हो, तो तुम्हारा वहाँ रहकर थोड़ा ड्रामा करना ज़रूरी था। मैं ऑफिस में बिजी था इसलिए तुम्हें पिक करने नहीं आया। ड्राइवर से बात हो गई थी मेरी कि तुम सेफ्टी विला पहुँच गई हो। थोड़े देर में फ्री होकर तुमसे भी बात करता। आई होप अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत या नाराज़गी नहीं होगी। अब जाकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करो, विला देखो, आशा की कंपनी एंजॉय करो, बहुत स्वीट लड़की है। तुम बस उस विला से बाहर नहीं निकल सकती, अंदर तुम जो चाहे कर सकती हो, पूरी फ्रीडम है तुम्हें। अब तुम वहाँ आराम से रहो, खुद को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने की कोशिश करो। वैसे तो वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कुछ हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आशा से कहना, और उसे अपना घर ही समझना। ओके बाय, मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। इनाया थोड़ी कंफ्यूज और परेशान थी। कायरव ने कुछ देर इंतज़ार किया पर दूसरे तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। क्या हुआ, कुछ और भी कहना है क्या तुम्हें? तुम सच में आज नहीं आओगे, मुझे यहाँ अकेले ही रहना होगा। मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, और तुम वहाँ अकेली नहीं हो, आशा वहीं रहेगी तुम्हारे साथ। लेकिन अभी मैं उसे जानती थोड़े ना हूँ, और मैंने तो सुना है कि तुम यहाँ जल्दी से आते भी नहीं हो, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा और कब आओगे तुम? बहुत डेस्परेट लग रही हो मुझसे मिलने के लिए, क्या बात है? कायरव ने शरारत से आईब्रो उठाई। इनाया चिढ़ गई। मैं कोई डेस्परेट नहीं हूँ, वो तो तुम होते तो मेरे लिए सिचुएशन थोड़ी आसान हो जाती, बस इसीलिए पूछा। कल आ जाऊँगा, तब तक तुम खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश करो। ओके बाय। बाय। इधर कायरव का कॉल कटा और मानव की कॉल आ गई। हेलो मनु, कहाँ है तू? मानव ने सीधे ही सवाल किया। इनाया ने आसपास नजरें घुमाई और मुंह बनाते हुए बोली, मिस्टर कायरव रायचंद के प्राइवेट विला में हूँ। आज सुबह ही घर आकर उसने सारी बात की और थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ पहुँची हूँ। तू ठीक तो है ना? मानव की आवाज़ में अपने लिए फ़िक्र महसूस करते हुए इनाया के लब हल्के से खिंच गए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं अपना ख्याल रखूँगी। इसके बाद इनाया ने मन ही मन कहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं। एक तो ये इतना बड़ा विला है, ऊपर से मैं यहाँ अभी किसी को जानती भी नहीं, कायरव भी नहीं है कि मुझे इस एटमॉस्फेयर से फेमिलियर फील करवा सके। घबराहट भी हो रही है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पर तुझे ये सब नहीं बता सकती वरना तू परेशान हो जाएगा। इनाया, तू सच में ठीक है ना? देख, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकती है, जानती है ना तू, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मानव की आवाज़ कानों से टकराई, तब जाकर इनाया अपने ख्यालों से बाहर आई और मीठी मुस्कान होंठों पर सजाते हुए बोली, यस आई नो, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। आई नो लाइफ मुझे किसी भी मोड़ पर लाकर खड़ा क्यों ना कर दे, पर तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे पता है, जैसे टीवी सीरियल और ड्रामास में नहीं दिखाते, बिल्कुल वैसा ही विला है, इतना बड़ा और खूबसूरत है, और अब मैं यहीं रहने वाली हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी जगह आऊँगी, और अब मैं यहाँ रहूँगी। तुम्हें पता है, यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए एक पर्सनल मेड भी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक झटके में मेरी लाइफ इतनी बदल गई। कल तक उस घर में मेरी खुद की औकात एक नौकरानी की थी, और अब मेरे लिए यहाँ सर्वेंट मौजूद है। मुझे कुछ भी खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे मैडम मैडम करके बुलाते हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है, मैं तो इस न्यू एक्सपीरियंस को खुलकर एंजॉय करने वाली हूँ। तो आएगा ना कभी यहाँ तो मैं तुझे भी दिखाऊंगी और सबसे मिलवाऊंगी भी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस तू वहाँ खुश है इतना बहुत है मेरे लिए। अच्छा ये बता, कायरव से कुछ बात हुई तेरी? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तूने? नहीं, वो यहाँ नहीं है, अपने ऑफिस में है। अभी तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। जब तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही साइन करना, ओके? कुछ देर बातों के बाद दोनों ने बाय कहकर कॉल कट कर दी। बप्पा, देखते रहना, हाँ फैसला तो मैंने ले लिया है, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ भी गई हूँ, बस आगे सब ठीक हो। इनाया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फ़ोन पॉकेट के हवाले करके रूम से बाहर निकलने के लिए गेट खोला ही था कि आशा एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे इनाया चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम, सर ने आपको ब्रेकफास्ट करवाने और उसके बाद विला दिखाने कहा है, आप बता दीजिए क्या खाना पसंद करेंगी, मैं बना देती हूँ। मैं अपने लिए खुद नाश्ता बनाना चाहती हूँ, आपके सर को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इनाया का सवाल सुनकर आशा परेशान हो गई। सॉरी मैडम, पर सर के ऑर्डर्स हैं कि आपका ख्याल रखा जाए, अगर उन्हें पता चला कि मेरे होते हुए आपने खाना खुद बनाया है तो वो गुस्सा होंगे। आपको जो भी खाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी, जो भी जल्दी और आसानी से बन जाए बना लो, मैं खा लूंगी। आशा सर हिलाते हुए चली गई। इनाया भी विला के गार्डन एरिया में आकर बैठ गई। अलग सा सुकून था यहाँ, ये शांति, फूलों की भीनी भीनी खुशबू, पत्तों की सरसराहट, ठंडी हवाएं, सब कुछ अच्छा लग रहा था उसे। पेड़ की छांव में घास पर बैठी इनाया अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद आशा खाने के लिए बुलाने आई तो इनाया ने उससे नाश्ता वहीं मंगवा लिया। कुछ ही देर बाद आशा चीज़ गार्लिक सैंडविच और जूस लेकर वहाँ आ गई। तुम भी मेरे साथ बैठकर खा लो, वैसे भी यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है और मेरा अभी अकेले खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। डोंट वरी, तुम्हारे सर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की फ्रीडम है। तुम्हें भी तो मेरा ख्याल रखने कहा है ना? आशा के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं झलकने लगी। इनाया के फोर्स करने पर वो उसके साथ बैठ गई। इनाया ने एक सैंडविच उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने झिझकते हुए पकड़ा। रिलैक्स हो जाओ यार, मैं भी तुम्हारी तरह इंसानी हूँ और तुम्हारी ही तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तुम मुझे मैडम में ही अपनी फ्रेंड समझ सकती हो। वैसे तो मैं जल्दी से किसी से फ्रेंडशिप करती नहीं हूँ, पर तुम मुझे बहुत स्वीट सी लगी, इसलिए मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर लूंगी। तो अब तुम भी मुझे वैसे ही ट्रीट करो, ओके? इनाया का सौम्य स्वभाव आशा के दिल को छू गया। आप बिल्कुल सर के जैसी हैं, वो भी हम सबको अपने नौकर नहीं फैमिली समझते हैं। ये बात मुझे नहीं पता चली। वैसे मैं तो तुम्हारे सर से कुछ दिन पहले ही मिली हूँ, तो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तुम उनके लिए कब से काम कर रही हो? मुझे तो 7 साल हो गए। पहले मैं यहाँ काम नहीं करती थी, रायचंद मेंशन में काम करती थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया था। सारा दिन मैं मुंबई की सड़कों पर भटकती रही। कहाँ जाती जब सर छुपाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। रात को फुटपाथ पर बैठी थी जब कुछ आवारा लड़के वहाँ आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उस दिन मेरी जिंदगी तबाह हो गई होती, पर सर ने आकर मुझे बचा लिया और अपने घर ले गए। उनके माता पिता को उनका ऐसे किसी अजनबी लड़की को घर लाना पसंद नहीं आया। सर मेरे लिए उनके अगेंस्ट चले गए, पर जब वो नहीं माने तो उन्होंने मुझे अपने दोस्त नितिन सर के पास भेज दिया। और 5 साल पहले जब उन्होंने ये विला खरीदा तो मुझे इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। तब से मैं यहीं काम करती हूँ।
इनाया बड़े ही ध्यान से आशा की बात सुन रही थी। कायरव ने जो उसके लिए किया, जानकर कहीं ना कहीं उसके दिल में कायरव की एक अच्छी इमेज बनने लगी थी। मैं तो तुम्हारे सर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम तो इतने सालों से उनके साथ कर रही हो, तो उनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। क्या तुम मुझे बताओगी? जी जरूर, आपको सर के बारे में जो भी जानना हो मुझसे पूछ लेना, अगर मुझे पता हुआ तो जरूर बताऊंगी। यूं ही बातों का कारवां चल पड़ा और बातों के बीच ही उन्होंने साथ में नाश्ता भी किया। इनाया का आज का सारा दिन आशा के साथ बीता, ढेर सारी बातें हुईं। यहाँ आशा को इनाया का नेचर पसंद आ गया, वहीं इनाया भी उसके साथ कंफर्टेबल हो गई। सुबह के बाद ना तो कायरव का फोन आया और ना वो खुद। अनजान जगह पर इनाया को नींद भी जरा मुश्किल से आई। अगली सुबह वो नींद में झूलते हुए नीचे आ रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई और वो बुरी तरह घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? टू बी कंटिन्यूड।